भगवान की जय। अब प्रारंभ होता है भरत का भारत, अर्थात इस सृष्टि के प्रथम युग की कहानी है, आदि युग की कहानी है। आज से करोड़ों साल पहले अयोध्या नगरी में 81 मंजिल के सर्वतोभद्र महल के अंदर भगवान ऋषभदेव का विवाह उनके पिता महाराजा नाभिराय और महारानी मरुदेवी की आज्ञा लेकर इंद्र ने दो कन्याओं के साथ किया। एक का नाम था यशस्वती और दूसरी का नाम था सुनंदा। इन दोनों कन्याओं ने ऋषभदेव जैसे तीर्थंकर युवराज के गले में वरमाला डालकर उनकी रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। और तब सौधर्मेंद्र ने उन्हें बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक पुण्यावाचन करते हुए सर्वतोभद्र महल के अंदर प्रवेश कराया। उस समय का एक अलौकिक दृश्य था। जैसे नाभिराय का विवाह मरुदेवी के साथ हुआ था, ऐसे अब कर्म भूमि प्रारंभ हो रही है, इसलिए उनके तीर्थंकर पुत्र ऋषभदेव का विवाह दो कन्याओं के साथ हुआ और वे सुखपूर्वक सर्वतोभद्र महल में निवास करने लगे थे। आपने जाना है कि ऋषभदेव की बड़ी रानी यशस्वती ने एक बार रात्रि के पिछले प्रहर में 6 स्वप्न देखे थे। सुमेरु पर्वत, चंद्रमा, सूर्य, हंस सहित सरोवर, चंचल लहरों वाला समुद्र और ग्रसित होती हुई पृथ्वी। इन सपनों को देखने के बाद उन्होंने राजसभा में जाकर अपने पति महाराजा ऋषभदेव से इन सपनों के फल पूछे थे और सपनों के फल में जान लिया था कि इक्ष्वाक वंश के आनंद को प्रदान करने वाला पुत्र तुम्हारे 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र होगा और वह चक्रवर्ती पुत्र होगा। अब यशस्वती महारानी गर्भ धारण कर चुकी थी और देखते देखते खुशियों के साथ 9 माह व्यतीत हो गए। उसके पश्चात महारानी यशस्वती ने महान दैदीप्यमान तेज से परिपूर्ण महान पुण्यशाली पुत्र को जन्म दिया। आदि पुराण के अंदर वर्णन है कि भगवान ऋषभदेव के जन्म के समय जो शुभ दिन, शुभ लग्न, शुभ योग, शुभ चंद्रमा और शुभ नक्षत्र आदि पड़े थे, वे शुभ दिन आदि उस समय भी थे, अर्थात जब भरत का जन्म हुआ, यानी महारानी यशस्वती ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, उस समय चैत्र कृष्णा नवमी का दिन था, मीन लग्न थी, ब्रह्म योग था, धन राशि का चंद्रमा था, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र था और वह पुत्र अपनी दोनों भुजाओं से पृथ्वी का आलिंगन करते हुए के समान उत्पन्न हुआ था। जन्म का समाचार सुनते ही निमित्त ज्ञानियों ने महाराजा नाभिराय को और ऋषभदेव को बताया कि यह पुत्र अपनी भुजाओं से पृथ्वी का आलिंगन करते हुए जो पैदा हुआ है, अतः ये समस्त 6 खंड पृथ्वी का सम्राट चक्रवर्ती होगा। अब आप सोचो, ऐसे चक्रवर्ती पुत्र के प्राप्त होने पर यशस्वती महारानी की खुशियों का क्या ठिकाना, अर्थात उन्हें असंख्य खुशियां मिल गई कि तीर्थंकर जैसे महान राजा की रानी होना, चक्रवर्ती जैसे पुत्र की माँ होना, तो मेरी कुक्षी धन्य हो गई, मेरा मातृत्व धन्य हो गया, मेरा नारीत्व धन्य हो गया, अर्थात नारी होना धन्य हो गया। क्योंकि नारियां तो बहुत होती हैं, लेकिन ऐसे पुण्य को प्राप्त करने वाली महान नारी होना, यह अपने आप में बहुत ही पुण्य की बात थी। अयोध्या नगरी की सारी प्रजा भी मां रानी मरुदेवी के साथ साथ यशस्वती को भी खूब आशीर्वाद प्रदान कर रही थी कि हर्ष से गदगद होकर के पति और पुत्रवती स्त्रियां कह रही थी, हे यशस्वती महादेवी, तुम इस प्रकार के सैकड़ों पुत्रों को जन्म दो। और राजमहल के अंदर करोड़ों प्रकार के बाजे बज रहे थे, खूब लड्डू बांटे जा रहे थे, खूब खुशियां मनाई जा रही थी, बाजे नगाड़े सब तरफ बज रहे थे। और स्वर्ग से आकर के आकाश में स्थित होकर देव देवियां भी कह रहे थे, हे पुत्र, तुम जयशील हो, चिरंजीव रहो, नंद नंद, वर्धस्व वर्धस्व, विजयस्व विजयस्व, चिरंजीव चिरंजीव। तमाम सारी अप्सराएं राजांगण में नृत्य कर रही थी और उस समय खूब मंगल चौक बना करके, घट रख करके, कमल पुष्पों से सहित स्वर्ण के घट रख रख के जगह जगह खुशियों का इजहार किया जा रहा था। उस समय कहते हैं कि दादा नाभिराज सभी को मुंह मांगा दान दे रहे थे और ऋषभ देव भगवान महाराज अवस्था में अब अपने हाथों से रत्नों की धारा बरसा रहे थे और प्रेम से भरे हुए समस्त बंधु बड़े हर्ष के साथ भरत क्षेत्र के अधिपति होने वाले उस पुत्र को भरत इस नाम से पुकारने लगे। भरत यानी तुम्हारे नाम से इस देश का, इस धरती का नाम भारत रहेगा। इतिहास के जानकारों का ये कहना है कि जहां पर अनेक आर्य पुरुष रहते हैं, ऐसा ही हिमवान पर्वत से लेकर समुद्र पर्यंत तक का चक्रवर्तियों का क्षेत्र उसी भरत के नाम के कारण भारतवर्ष इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। खूब खुशियां मनाई गईं, खुशियों की कोई कमी नहीं। माता यशस्वती जैसे ऋषभ देव भगवान तो तीर्थंकर थे, तीर्थंकर का नियम होता है जो माता का दुग्ध पान भी नहीं करते, माता का स्तन पान नहीं करते। इंद्र उनके दाहिने हाथ के अंगूठे में अमृत रख करके जाता है, उसी को चूस चूस करते जाते हैं, लेकिन भरत के साथ ऐसा कुछ नहीं। ये अपनी माता यशस्वती के और सुंदर वर्णन आया कि जब वो स्तन पान करते हुए कभी कभी दूध के कुंडले कर करके छोड़ती थी तो ऐसा लगता था कि मानो वह अपनी अपना यश ही दिशाओं में बांट रहा है। तो ऐसे वह बालक कभी कभी मंद मंद मुस्काता हुआ, कभी मनोहर हास करता हुआ माता पिता की गोद में खेलता और उनके साथ साथ सारे परिवार को हंसाता हुआ मनोरंजन करता था। अपने पिता की, अपने दादा की उंगली पकड़ पकड़ करके वह चलता हुआ भरत पुत्र सारी धरती को शोभायमान कर रहा था। युग की आदि की कहानी, महान पुण्यशालिनी यशस्वती माता, महान पुण्यशाली पुत्र भरत अपने पुण्य से सबको प्रसन्न कर रहे थे। आचार्य जिन सेन स्वामी ने कहा है, प्रमोद भरता प्रेम निर्भरा बंधुता सदा, तमावत भरतम भावी समस्त भरताधिपम, तन्नामना भारतम वर्ष मितिहासी जनास्पदम, हिमात्रेरा समुद्राच क्षेत्रम चक्रभृतामिदम। महापुराण जिसमें से आदि पुराण निकला, उसके पर्व 15 के अंदर यानी 15वें चैप्टर के अंदर जिन सेन स्वामी ने कहा कि उस समय से उन भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और ये हिमवान पर्वत से लेकर समुद्र पर्यंत का चक्रवर्तियों का क्षेत्र रहा, उसी भरत के नाम के कारण भारतवर्ष इस नाम से ही आज तक भी प्रसिद्ध है, जाना जाता है। ये आपको जैन ग्रंथ, आज इतिहासकार आपको क्या बताएंगे। इतिहास कहते हैं 5000 साल से लिखा जा रहा है, लेकिन ये इतिहास करोड़ों साल पहले लिखा है। प्राग ऐतिहासिक काल से इस धरती पर न जाने कितने इतिहास चले आए, और आज के इतिहासकारों की बात तो जाने दीजिए, जो इतिहास लिखा भी नहीं जा सकता लेकिन मिटाया भी नहीं जा सकता। ऐसे इतिहास को हमारे इन पुराणों से और प्रथमानुयोग से, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग से इतिहास और भूगोल की बातों को जानकर हमें ज्ञात होता है कि किस प्रकार से पुण्य के करने से व्यक्ति, ये जीव महान वैभव को प्राप्त करता है। पाप के कारण ये जीव महान कुल में भी जन्म लेते हुए निम्न निंद कार्य को करके नरक तिर्यंच गति को भी प्राप्त कर लेता है, और उच्च कुल को प्राप्त करके महापुरुष लोग पुण्य की वृद्धि जब करते हैं तो इस स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं, और उसके बीच में अपने जीवन को एक इतिहास का स्वरूप प्रदान कर देते हैं। महाराजा, मंडलीक राजा, महामंडलीक राजा, चक्रवर्ती आदि बन करके और अपने पुण्य का संपादन करते हैं, उसकी वृद्धि करते हैं। एक बार कहा गया कि भई एक घर के अंदर कोई बालक जन्म लेता है तो उस घर की खुशियां वृद्धिंगत हो जाती हैं, और जहाँ तीर्थंकर जैसे हो, जहाँ चक्रवर्ती जैसे पुत्र का जन्म हुआ हो, वहां की खुशियों का क्या कहना। तो उस समय प्रजा के लोग कहा करते थे, अहो आत्मा वही पुत्र नामासी, अर्थात पिता की आत्मा ही पुत्र नाम से ही कहा जाता है। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि कहते हैं कि इस पुत्र को देख लो तो बिल्कुल पिता की डुप्लीकेट है, तो पिता की आत्मा उसके अंदर रहती है और वो उसी सांचे में ढल जाता है, इसलिए ये सूक्ति एकदम सच हो गई। आत्मा वही पुत्र मासी, अर्थात पिता की आत्मा ही पुत्र नाम से जानी जाती है। ये बात भरत सार्थक कर रहे थे, तो वही भरत 15वें मनु भगवान ऋषभ देव के मन को भी अपने प्रेम के अधीन कर लेते थे, इसलिए सब लोग कहते थे कि भरत 16वां मनु ही उत्पन्न हुआ है। यानी युग की आदि में जब भोग भूमि का अंत होने वाला था, तब 14वें कुलकर के रूप में महाराजा नाभिराय ने मनु के रूप में, जिन्हें कुलकर कहते हैं, उन्होंने जन्म लिया। वे अंतिम कुलकर थे, क्योंकि 14 कुलकर पैदा होते हैं जो वहां की व्यवस्थाओं को बताते हैं। और 15वें कुलकर के रूप में ऋषभ देव भगवान को इसलिए लिया गया कि उन्होंने भोग भूमि के अंत का काल और कर्म भूमि की प्रारंभिक काल के बारे में विधि क्षेत्र के अनुसार अपने अवधिक ज्ञान से सारी व्यवस्थाएं बताई थी। अब उन्हीं का अनुसरण करते हुए भरत ने जो रहा सहा था उन व्यवस्थाओं को आगे और बनाया, इसलिए उनको 16वां मनु, 16वां कुलकर भी कह दिया गया। ऐसे भरत भगवान का पुण्य चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, तो आप सबको भी इच्छा होगी कि हमारे यहाँ भी, हमारे घर के अंदर भी भरत जैसे पुत्र का जन्म हो। इसलिए अपने कुल को शुद्ध रखना, सज्जाति की व्यवस्था रखना, अपने बच्चों के अंदर संस्कार देना कि चाहे कितना ही आप पढ़ जाएं, लेकिन उसके बाद हायर एजुकेशन की बात भी अपने घर की आन मान मर्यादा को जरूर कायम रखना, और खानदान की शुद्धि रखना, खान पान की शुद्धि रखना। आज जरूर भरत भगवान जैसे पुत्रों की, उनके संस्कारों की इस देश के अंदर आवश्यकता है, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम और आप ही कर सकते हैं। इस कहानी को सुनते सुनते आप सबके पुण्य की खूब वृद्धि हो, इन्हीं भावनाओं के साथ आज का ये भरत का भारत व्याख्यान माला में दूसरा ये कथानक समापन करती हूँ।